ஓகே அனிதா கௌரவ பிரேமானந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்சனசலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏனா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுதா பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீரூபாம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சஹிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதம் ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ருஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரிய வாஞ்சா கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசவி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா யாம் பச்சே பஹுத் பவர்ஃபுல் ஹே ஹரே கிருஷ்ணா தோ அபி ஹமாரே பாஸ் ஏக் கண்டா ஹே தோ ஹம் மதன் மோகன் கே பாரே மே சுனேங்கே ஆகே ஆ சக்தே
சவாதே சவாதே ஆகே ஆகே
பச்சோ பில்குல் அபி சாந்தா ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அவதரித் ஹோதே ஹேன் கஹா அவதரித் ஹோதே ஹேன் நவத்வீப் மாயாபுர் மே தோ அவதரித் ஹோகர் சைதன்ய மகாபிரபு கா மிஷன் தா க்யா மிஷன் தா கி ஜாரே தேகோ தாரே கஹோ கிருஷ்ண உபதேஷ் யா சைதன்ய மகாபிரபு ஹரேக் ஜீவ் கோ கிருஷ்ண பக்தி பிரதான் கரணா சாஹதே தே லேக்கின் சாரா ஸ்ரேய சைதன்ய மகாபிரபு சாரா ஸ்ரேய ஸ்வயம் கே லியே நஹி லேனா சாஹதே தே வோ தூஸ்ரே பக்தோ கோ பி உஸ்கா ஸ்ரேய தேனா சாஹ ரஹே தே தோ இஸ்லியே சைதன்ய மகாபிரபு ஜப் தக் நவத்வீப் மே தே தப் தக் உன்ஹோனே யே நாம சங்கீர்த்தன் ஷுரூ கியா ஔர் சந்நியாஸ் லேனே கே பாத் சைதன்ய மகாபிரபு ஜகன்நாத்புரி ஜாகர் நிவாஸ் கர்தே ஹேன் தோ ஜப் ஜகன்நாத்புரி கயே तो चैतन्य महाप्रभु को केवल एक ही चिंता थी, कोई अपने मेन स्थान से दूर जाता है और कोई एक्टिविटी वो अपने उस स्थान में शुरू करता है, उसको उसकी चिंता हमें लगी रहती है। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन शुरू किया था नवद्वीप में निमाई पंडित के रूप में, और फिर जगन्नाथपुरी संन्यास लेकर गए तो उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य नाम उनको उनके सन्यास गुरु केशव भारती ने दिया था। तो जब ये सन्यास उनको दे रहे थे तो उन्होंने सोचा इसका क्या नाम रखो, तो उन्होंने सोचा सन्यास उनको मैं प्रदान कर रहा हूँ तो उनके लिए वो चाह रहे थे कि उनका नाम ये रखना उचित है क्योंकि सारे जीवों में वो कृष्ण चेतना जागृत करने में समर्थ है। इसलिए केशव भारती चैतन्य महाप्रभु का या निमाई का नया नाम रखते हैं कि आज से आपका नाम क्या होगा, श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि आप ही एकमात्र इस संसार में हो जो इस बद्ध जीवों के हृदय में या चेतना में कृष्ण को स्थापित कर सकते हो। और केशव भारती से संन्यास ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु बहुत नृत्य करने लगे, हाँ, कठुआ में जहाँ उन्होंने संन्यास लिया। और उनके जो संन्यास गुरु थे वो भी अपने डंडे के साथ, कमंडलों के साथ नृत्य करने लगे। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अभी वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो वृंदावन जाने की भावना उनके हृदय में प्रगाढ़ हो गई। तो उस समय केशव भारती ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ वृंदावन चलूंगा। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो महाप्रभु निकल, महाप्रभु कहते कि आप मत चलिए, आप यहाँ ही निवास करिए कटवा में। तो वो वहाँ निवास करने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से नित्यानंद प्रभु के साथ वृंदावन के लिए निकलते। उन्होंने कहा कि संन्यास ग्रहण करने का एकमात्र उद्देश्य है मुकुंद की सेवा में नियुक्त होना, और मुकुंद की सेवा मैं वृंदावन में रहकर करूंगा। तो इस भावना से वो वृंदावन की ओर निकल पड़े। लेकिन नित्यानंद प्रभु को ये सहा नहीं जा रहा था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन ना जाकर शांतिपुर जाए, वहां नवदीप के सारे भक्तों से मिले। तो फिर उनको वृंदावन का बहाना बनाकर उनको शांतिपुर लेके आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर अपनी माता के आदेशों पर जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे तो उनको अत्यधिक चिंता हो गई कि मैंने ये आंदोलन शुरू किया है नवदीप में, इसका क्या होगा, कौन इसको आगे कंटिन्यू करेगा। हाँ, तो उस समय उनके साथ नित्यानंद प्रभु थे। तो नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आदेश दिया एकांत में कि आप क्या करो, बंगाल में जाओ और वहां जाकर प्रचार करो, हरि नाम सारे जीवों को दे दो। तो नित्यानंद प्रभु वहां जाते हैं अपने सारे संगियों के साथ और बंगाल में सबको हरि नाम प्रदान करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं फिर वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं। पहले तो वृंदावन संन्यास लेते ही जाना चाह रहे थे, दूसरी बार वो निकल पड़े तो हर एक डिवोटी ने कहा कि आप वृंदावन जा रहे हो तो आपके साथ हम भी निकलना चाहते हैं। तो सारे प्रोमिनेंट डिवोटीज ने उनको उनके साथ जाने की तैयारी की। तो हर कोई डिवोटी उनके साथ निकलने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूट पकड़ा कि कौन से रूट से जाऊंगा, नवद्वीप होकर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नवद्वीप मेरी दो माताएं हैं, एक तो है गंगा और दूसरी है सची माता, और नवद्वीप के भक्तों को भी मिलना चाहता हूं। तो ये बहाना बनाकर वृंदावन जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु फिर से बंगाल होकर जाते हैं और आगे जाकर फिर कनाई नटशाला पार करके रामकेले में जाते हैं, जहां वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा में निकले तो हजारों लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। महाप्रभु जहाँ चरण रखते थे वहां हर एक भक्त उस चरण धूलि को लेने के लिए दौड़ पड़ता था। पूरे रास्ते में गड्ढे बन गए थे, उससे पता चलता था कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ से चल रहे हैं। तो फिर महाप्रभु सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, उनको दीक्षा आदि देते हैं, उनका नया नाम उनको प्रदान करते हैं रूप सनातन राम के लिए गांव में। और फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं। वापस आते मतलब सनातन गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन जाने का ये परिपाटी नहीं है, जैसे कोई सर्कस वाला अपने साथ पूरा बैंड और सर्कस लेके निकलता है वैसे आप जा रहे हो। हाँ, वृंदावन तो अकेले जाओ या एक दो लोगों को साथ लेके जाओ, ये उचित है वृंदावन गमन। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु को बहुत लगती है सनातन गोस्वामी के, और वहां से ही वापस निकलते हैं और वापस फिर से जगन्नाथपुरी आते हैं। और फिर जगन्नाथपुरी से फिर से वो वृंदावन जाना चाह रहे थे। वृंदावन जाना एक साधक या जीव के लिए स्वाभाविक है। हाँ, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद छोटे से बालक थे तो रेलवे स्टेशन में जाकर कहाँ देखते थे कि कौन सी ट्रेन जगन्नाथपुरी जा रही है और वृंदावन जा रही है। तो हमारा वृंदावन ये हमारा नित्य स्थली है, निवास स्थली है हर एक जीव की। तो चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी में रुके और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे जगन्नाथ वृंदावन जाना है। तो वहां स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनको हमेशा बहाने मारते थे, देखो अभी ना गौ ये आ रहा है, दोल यात्रा आ रही है, इसके बाद चले जाना। तो दोल यात्रा खत्म हो गई तो वो कहते हैं अभी रथ यात्रा आएगी उसके बाद चले जाओ, तो रथ यात्रा भी आते थे। और फिर वो कहते थे अभी देखो ठंड के दिन आ गए हैं, वृंदावन में तो बहुत ठंड होती है, वहां जाना उचित नहीं है, आप यहाँ ही निवास करो, कार्तिक एंड करने के बाद आप चले जाओ। तो ऐसा पूरा साल बिताते हैं। हाँ, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर उनको बहाना बताते बताते चैतन्य महाप्रभु उनके उनके परमिशन के बिना धाम जाने के लिए तैयार नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते हैं कि वैष्णव गुरु और कृष्ण का जो परमिशन है वो हमारे धाम जाने के लिए हमें सिद्धि प्रदान कर सकता है, तब हम वास्तव में धाम में प्रवेश कर सकते हैं, धाम को समझ सकते हैं, धाम के प्रति आसक्ति जागृत कर सकते हैं। तो फिर भी उन्होंने फाइनली कहा कि कब तक चैतन्य महाप्रभु को हम परेशान करते रहेंगे। फाइनली उन्होंने परमिशन दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु निकले। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने साथ किसी को नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेला चला जाऊंगा वृंदावन। तो डिवोटीज ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा किसी एक ब्राह्मण को ले जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं पहले दक्षिण भारत की यात्रा में गया था तो मैं एक ब्राह्मण को ले गया था कृष्णदास, और वो मुझे छोड़कर हाँ भट्टाचार्यों के स्त्रियों के साथ चला गया, मेरे साथ और कोई नहीं चाहिए। फिर भी रामानंद राय और स्वरूप दामोदर उनको कहते हैं बलभद्र भट्टाचार्य बहुत ही अच्छे ब्राह्मण युवक है और आपके प्रति उनका बहुत अधिक श्रद्धा है, सेवा की भावना है और बहुत पक्के हैं, उनको आप अपने साथ ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य को लेकर और उनके साथ और एक सेवक को लेकर यहाँ के लिए निकलते वृंदावन। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए आते समय सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को भी मिलते हैं और इन दोनों को भी यही आदेश देते हैं। बनारस में सनातन गोस्वामी को मिलते हैं और इलाहाबाद में किसे मिलते हैं? रूप गोस्वामी को। तो वहां उन दोनों को शिक्षा प्रदान करते हैं और दोनों को सेम आदेश प्रदान करते हैं कि ब्रजभूमि वृंदावन में चले जाओ, वहां जाकर लीला स्थलियों की खोज करो, वहां जाकर वैष्णव आचरण के ऊपर ग्रंथों का निर्माण करो, भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करो। तो इस प्रकार से उनको आदेश दिए हैं और फिर ये रूप और सनातन वृंदावन आते हैं। अब वृंदावन आकर वो अपना मिशन बनाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के आदेश थे, उसको अपना कहते ना लाइफ एंड सोल वो बनाते हैं। और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के आदेशों पर यहाँ आते हैं और यहाँ निवास करने लगते हैं वृंदावन में। जब यहाँ आए सनातन गोस्वामी तो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, और उस सारे ऐश्वर्य आदि को छोड़कर सनातन गोस्वामी यहाँ आकर ये जो बड़ा सा टीला है जहाँ आप सब लोग जानते ही हैं द्वादश आदित्य टीला जिसे कहते हैं, द्वादश आदित्य मीन्स द्वादश मीन्स 12, आदित्य मीन्स सूर्य। तो पीछे इसके पीछे हम जाते हैं तो यहाँ कालिया दह लीला भगवान ने किए थे, सुबह हम परिक्रमा कर रहे थे तो देखा था वहां। तो भगवान ने कालिया को दंडित किया और जल के अंदर बहुत समय तक भगवान रहे कालिया के साथ, तो उनको बहुत ठंड लग गई और उस ठंड से उनको गर्मी चाहिए थी, तो भगवान इस टीले के ऊपर आकर लेट गए। तो उस समय सूर्य ने सोचा कृष्ण की मैं सेवा करना चाहता हूं, तो सूर्य कैसे सेवा करेगा उनको ताप देकर। तो एक सूर्य से भगवान को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर 12 आदित्य 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण को गर्मी प्रदान करते हैं। तो सनातन गोस्वामी अपने भजन के लिए ये द्वादश आदित्य टीला को चूज करते हैं और सनातन गोस्वामी आकर यहाँ निवास करते हैं और भजन करते हैं। उनका भजन क्या था? रेगुलर हरिनाम का उच्चारण करना और यहाँ से कई मील दूर गोवर्धन के लिए जाना, गोवर्धन की बड़ी लंबी सी परिक्रमा करना चंद्र सरोवर से लेकर मानसी गंगा तक, और फिर वहां से वॉक करते हुए मथुरा जाना, मथुरा जाकर मधुकरी लेना, अलग अलग लोगों के घर में जाकर भिक्षा याचना करना और यहाँ आकर फिर से निवास करके ग्रहण करना। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी अपना यहाँ जीवन यापन कर रहे थे। और सनातन गोस्वामी शुरुआत से ही कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। जब वो रामकेली में निवास करते थे, रामकेली का मतलब ही है जहाँ राम ने क्या की है, बहुत सारी लीलाएं की हैं, केली का मतलब है लीलाएं। भगवान राम और सीता जब वनवास में थे तो वो वनवास में घूमते घूमते ये राम के लिए स्थान में गए थे, और वह सीता देवी ने भगवान राम अपने उन्होंने पिंडदान आदि किया था जिसके कारण उस गांव का नाम राम के लिए पड़ा, और वहां ही सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी निवास करते थे। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जब उस गांव में निवास कर रहे थे तो उन्होंने अपने पूरे गांव को वृंदावन बना लिया था। ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो उनके गांव में नहीं थी। आज भी राम के लिए उस छोटे से गांव में जाते हैं तो जहां रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का घर है वहां राधा कुंड श्याम कुंड है, और घर के पूरे साइड में 8 सखियों के कुंड है, बहुत सारी लीला स्थलियां हैं, और सब जगह कदम्ब के ट्रीज हैं, तमाल के वृक्ष हैं, तो इससे कृष्ण का कभी विस्मरण नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे। सनातन गोस्वामी भागवतम पर लेक्चर दिया करते थे, कई सारे लोग उसको सुनने के लिए भी आते थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी जब सो रहे थे तो उनको स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा उन्होंने, एक बालक या एक ब्राह्मण उनको आता है स्वप्न में और भागवतम की कॉपी देता है। तो सनातन गोस्वामी उस भागवतम को लेकर अपने छाती में लगाते हैं और उनकी नींद टूट जाती है, तो देखते हैं कि भागवतम मेरे पास नहीं है। तो जब वो बाहर आते अपने घर का दरवाजा खोलते अर्ली मॉर्निंग, तो एक ब्राह्मण बाहर खड़ा हुआ नजर आता है, और वो क्या लेके खड़ा था, श्रीमद् भागवतम की कॉपी लेकर खड़ा था। सनातन गोस्वामी को वो देता है, और सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को अपना प्राण बनाते हैं, इसलिए वो अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि मेरा कोई बंधु है तो वो श्रीमद् भागवतम है, मेरा कोई क्लोज सखा है, मेरे कोई माता पिता है, मेरा कोई गुरु है तो वो कौन है, श्रीमद् भागवतम। इतना अधिक प्रीति श्रीमद् भागवतम से था। तो सनातन गोस्वामी फिर यहाँ निवास करने लगे, और यहाँ से कभी कभी गोकुल महावन जाया करते थे। तो एक बार वो जब महावन गए तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक बालक भी खेल रहा है, और इन सबके खेल को सनातन गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर देख रहे थे। उनको एक बालक बहुत आकर्षक लगा जो इतना चतुरता से उन बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते जब सनातन गोस्वामी उसके पीछे गए, पूछना चाह रहे थे तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बालक भागने लगा। भागते भागते कहाँ गया, वहां के मंदिर के अंदर घुस गया। सनातन गोस्वामी ने समझ लिया है कि ये कौन है, कृष्ण है। कई स्थानों में ये वर्णन आता है कि ये सारे बालक जब खेल रहे थे तो जो बच्चा हर जाता था उसको दूसरे बालक को अपने पीठ पर लेके चलना होता था। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं उन बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कृष्ण अभी भी अपनी नित्य लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। फिर वो सनातन गोस्वामी भिक्षा मांगने के लिए जाते थे मथुरा में। तो मथुरा में जब वो भिक्षा यापन करने के लिए गए तो उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में जाकर भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगते समय उन्होंने देखा कि उस ब्राह्मण के घर में जो बच्चे हैं वो सारे उनके विग्रह के साथ बहुत फ्रेंडली खेल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी वहां जो श्री थी जो भगवान के लिए बना रही थी, क्या खीर बना रही थी, और सुबह सुबह उठी थी वो क्लीन, मतलब स्नान आदि नहीं किया था तो वो ब्रश कर रही थी, दातुन से ब्रश कर रहे थे। तो उसने देखा कि खीर हिलाने के लिए कोई स्पून होना चाहिए, उसके बदले वो क्या कर रहे थे, जो दातुन कर रहे थे जिस लकड़ी से, उसी से खीर को हिलाते थे फिर दातुन कंटिन्यू करते थे। सनातन गोस्वामी ने डांटा, उन्होंने कहा भगवान के लिए तुम बना रही हो और ये झूठा हो रहा है। हाँ, तो उसको कहा कि तुम हमेशा नीट एंड क्लीन रहो। तो सनातन गोस्वामी दूसरी बार भी आए तो जल्दी सुबह के समय में आए तो उन्होंने देखा कि अभी वो बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन दो बच्चे उसके साड़ी को खींच रहे हैं कि मैया भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो वो कौन थे, एक तो उनके जो डेटी स्वयं मदन गोपाल कृष्ण बालक के रूप में, और उसका जो बालक बच्चा था उस माताजी का जो बालक था, वो दोनों ओर से उसकी साड़ी खींच रहे हैं, और ये तो अपने आप को नीट एंड क्लीन करने में लगी है, बहुत समय हो गया, 9 बज गए हैं फिर भी आज कुछ नहीं बनाया था। तो सनातन गोस्वामी आए और उन्होंने देखा कि ये तो उसकी साड़ी खींच रहे, मांग रहे कि कुछ हमें खिला खाने के लिए दे दो और वो अपनी बिजी हैं, सारी चीजें साफ सफाई करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी आते कहते कि ये सब छोड़ दो, क्लीनलीनेस छोड़ो और क्या करो, इनके लिए कुछ बनाओ। तो फिर वो बनाती है। तो फिर सनातन गोस्वामी उनके घर में रेगुलर मधुकरी के लिए जाते थे और जब उस डेटिस को देखते थे जिनका नाम था मदन गोपाल, ये मदन गोपाल वो विग्रह है जब भगवान इस जगत से अप्रकट होते हैं और अर्जुन को ये आदेश देते हैं कि मेरे सारे प्राणियों को लेकर आप हस्तिनापुर चले जाओ, और उन हस्तिनापुर सारे रानियों को लेके आते हैं, उसमें वज्रनाभ भी थे, हाँ, इनके जो प्रपौत्र थे भगवान के, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध, उनके पुत्र कौन थे, वज्रनाभ। इस वज्रनाभ को भी साथ लेकर आते हैं और वज्रनाभ को जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो राजा बनाते हैं, कहाँ का, मथुरा का, क्योंकि उस समय मथुरा या वृंदावन सब खाली हो गया था, कोई नहीं रह रहा था यहाँ। भगवान गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान बहुत बड़ा विमान लेके आए, एक चारियत, और उसके ऊपर सारे ब्रजवासी सबको डाला, जिसमें बहुत सारी घंटियां थी, घंटियों की आवाज करते करते सारे ब्रजवासी भगवान के धाम चले जाते हैं, ब्रज खाली हो जाता है। तो फिर वज्रनाभ को जब राजा बनाया, वज्रनाभ ने सोचा मुझे राजा बनाया लेकिन कोई प्रजा नहीं है तो काहे का राजा। तो युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर से कुक्षत्रिय ब्राह्मण सबको लाके यहाँ बसाया, हाँ मथुरा में बसाया, और फिर परीक्षित महाराज को राजा बनाते हैं वहां का हस्तिनापुर का, यहाँ का राजा वज्रनाभ को बनाते हैं और पांडवास निर्वाण ग्रहण करते इस संसार से चले जाते हैं। तो वज्रनाभ को हमेशा चिंता रहती थी कि मैं क्या करूं, यहाँ का मुझे राजा बना दिया है। तो परीक्षित महाराज उनको मिलने आते, एक बार परीक्षित महाराज जब मिलने आते तो उनको कहते हैं कि आपको इतना दुखी होने का कारण नहीं है वज्रनाभ, हाँ, क्योंकि नंद महाराज के जो गुरु हैं, हाँ कुल गुरु, हाँ कौन थे, शांडिल्य मुनि, शांडिल्य मुनि को वो बुलाते हैं और शांडिल्य मुनि के आदेशानुसार वज्रनाभ कार्य करने लगते हैं। तो वज्रनाभ को शांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरा पूरा आशीर्वाद है और मेरे वचनों का तुम पालन करो, उससे कृष्ण की कृपा तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। उनको वो कहते हैं कि ये ब्रज भूमि कृष्ण का अपना निजी धाम है और यह भगवान ने हर स्थान कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं की हैं, उन सारी लीला स्थलियों को खोजो और मंदिरों का निर्माण करो, कुंडों का निर्माण करो, विग्रहों की स्थापना करो। तो फिर वज्रनाभ अलग अलग वृक्ष के नीचे हर रोज जाया करते थे, कृष्ण को प्रार्थना करते थे, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते थे, कृष्ण उनके हृदय में अपनी सारी लीलाओं का स्मरण कराते थे कि इस स्थान में मैंने ये लीला की। तो सारे जितने भी ब्रज के गांव हैं उन गांवों का नाम वज्रनाभ ने ही दिया है और वज्रनाभ ने ही उन गांवों की स्थापना की है। उन गांवों में विशेष जो विग्रह है वो मेनली वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है, लेकिन प्रमुख 18 विग्रहों की स्थापना वज्रनाभ ने की थी। उसी में ये तीन प्रमुख विग्रह थे जो गौड़िया संप्रदाय के प्राण है, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव। इस प्रकार से वज्रनाभ इन सारे स्थलियों की स्थापना करते हैं और ये विग्रह की भी स्थापना करते हैं, मदन मोहन विग्रह, जो जिनका नाम मदन गोपाल था। लेकिन वज्रनाभ के बाद ये सारी चीजें एक प्रकार से अप्रकट हुए। फिर जब अद्वैत आचार्य आए अपनी युवा अवस्था में, अद्वैत आचार्य ने सब जगह भ्रमण किया, तो अद्वैत आचार्य सारे तीर्थों का विजिट करते करते वृंदावन आए, वृंदावन के 12 वनों का उन्होंने विजिट किया। और जब दो जगह कहा गया है कि यहाँ इधर आगे एक अद्वैत वट है, हम इसके बाद वहां दर्शन खुला होगा तो जाएंगे, अद्वैत वट में उस स्थान में उनको मदन गोपाल के विग्रह मिलते हैं और अद्वैत आचार्य उनकी सेवा करते रहते हैं। तो अद्वैत आचार्य उस मदन गोपाल को अपने साथ लेके जाना चाह रहे थे शांतिपुर, कि वहां जाकर मैं उनकी उपासना सेवा करूं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुझे ब्रज से बाहर मत लेके जाओ। तो अद्वैत आचार्य ने एक पेंटिंग बनवाया और मदन गोपाल को पेंटिंग के रूप में अपने साथ लेकर जाते हैं शांतिपुर में और उनकी वहां सेवा करते हैं उस फॉर्म में। तो अद्वैत आचार्य ने अपने जो शिष्य है चौबे, पुरुषोत्तम चौबे, उनको ये विग्रह दिए, मथुरा में वो उनकी सेवा करते थे, जहां सनातन गोस्वामी जाने लगे। सनातन गोस्वामी जब यहाँ आते थे उनको लगता था अब मेरे पास कृष्ण के विग्रह होने चाहिए ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनकी आराधना कर सकूं। तो फिर वहां भी जो चौबे थे मथुरा में, उनके स्वप्न में भगवान आते और कहते हैं, चौबे तुम्हारे पास इतने सारे बच्चे हैं, वो सनातन बेचारा अकेला है, मुझे किसके पास भेजो? सनातन के पास भेजो। और यहाँ सनातन गोस्वामी को भगवान डांटते हैं कि मुझे बहुत अधिक प्रेम है चौबे और उनकी पत्नी से, वो जिस प्रकार से मेरी सेवा करते, मुझे ट्रीट करते हैं, वो मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ, तुम्हें उनको डांटने का अधिकार नहीं है। तो सनातन गोस्वामी को लगा मैंने तो इतना अपराध किया है, तो सनातन गोस्वामी क्षमा याचना करने के लिए मथुरा जाते हैं। जब वो मथुरा गए तो वहां वो ब्राह्मण उनके चरणों में गिरता है और वो कहता है कि कृष्ण के आदेश हैं, कृष्ण चाहते हैं, मदन गोपाल चाहते हैं कि आपसे सेवा स्वीकार करो। तो भगवान ढूंढते अपने सेवा के लिए भक्त को, डेटिस क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के भक्तों को निकालते हैं और उनसे सेवा लेना चाहते हैं। जैसे हम वृंदावन में देखते हैं, हम माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे तो वहां कौन उनके लिए प्रकट होते हैं, श्रीनाथ जी, जो भगवान गोपाल है जो अभी नाथ द्वारा में है। तो उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी से सेवा लेने के लिए ये मदन गोपाल लालायित है और फिर वो उनको लेकर आते हैं। कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि मदन गोपाल एक बालक के रूप में उनके घर में घूमते रहते थे। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तो आपको उठा के नहीं ले जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो भगवान कहते हैं कि आप आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। तो मथुरा से मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के पीछे पीछे चलते इस खिल के ऊपर आते हैं और जब सनातन गोस्वामी मुड़ के मदन गोपाल को देखते हैं तो विग्रह के रूप में सनातन गोस्वामी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी उनकी सेवा करने लगे और सनातन गोस्वामी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वो मथुरा में जाकर भिक्षा याचना करते थे और रोज वही सूखी रोटी और वो ऑफर करते थे। तो भगवान कहते कि हे सनातन, कब तक मुझे ये सूखी रोटी खिलाते रहोगे, इसके साथ कुछ नमक भी दे दो। सनातन गोस्वामी जो आटा मिलता था उसमें यमुना का जल मिलाकर आग के ऊपर डाल के उसका बड़ा सा बाटी बनाते थे और वही भगवान को अर्पित करते थे। तो भगवान कहते कब तक ये खाते रहूंगा, मुझे कुछ उसमें नमक भी तो ऐड करो। तो वो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, आज तुम क्या मांग रहे हो मुझसे,
नमक
मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर भी भगवान बहुत अधिक प्रेम का आदान प्रदान सनातन गोस्वामी से करते थे और सनातन गोस्वामी निरंतर उनकी सेवा के लिए तत्पर थे। तो ऐसे मदन गोपाल, जिन्हें मदन मोहन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
मदन
मोहन। तो जो मदन है, मदन को कहा जाता है कामदेव। तो कामदेव इस संसार में हर जीव को आकृष्ट करता है। कामदेव जब शिवजी को आकृष्ट करने के लिए प्रयास कर रहा था तो शिवजी पहले उनसे भाग रहे थे। कामदेव हमेशा अपने साथ बाण रखते हैं, और पांच बाण होते हैं, धनुष होता है उनके साथ, जो धनुष शुगर केन का बना होता है और उसकी रस्सी हनी बी से बनी होती है और पांच प्रकार के फ्लावर से पांच बाण होते हैं और उसके द्वारा जीवों पर आघात करते उस बाण से कोई मरता नहीं है, लेकिन उस बाण से काम रोग के कारण हर एक जीव पीड़ित रहता है, लस्ट के कारण, और सारी इंद्रियां विचलित हो जाती हैं, मन अशांत हो जाता है जब कामदेव अपने पुष्प बाण से जीव के ऊपर प्रहार करता है। तो ऐसे कामदेव ने सोचा कि मैं शिवजी को ट्राई करता हूं। पहले तो वो वृंदावन आए, उनको उन्होंने सुना कि कृष्ण वृंदावन में सबको आकृष्ट करते हैं, किसी से वो आकृष्ट नहीं होते। तो कामदेव ने सोचा मेरे कारण तो सारा जग इस भौतिक काम उपभोग के लिए पागल है, आकृष्ट है, मैं वृंदावन जाकर कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करूंगा। तो कामदेव आता है और कृष्ण जिस महल में निवास करते थे उसके आगे जो वृक्ष था उसके ऊपर जाकर कामदेव बैठ जाता है और बैठते ही जैसे कृष्ण बाहर आते अपने पुष्प बाण निकालना शुरू करते हैं, कृष्ण को जैसे देखा कामदेव ने वैसे कामदेव अपने वृक्ष से गिर पड़े, इतने अधिक कृष्ण आकर्षक हैं। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, मदन मोहन। इवन सारे देवता भी आकर्षित रहते हैं काम से। शिवजी को उन्होंने इतना ये किया, शिवजी उनके डर से भागा करते थे, लेकिन एक बार शिवजी स्थित हो गए, कामदेव जैसे सामने आया अपना बाण निकाला, शिवजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने आग से आग निकाले, जिसके कारण कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए कामदेव का नाम क्या पड़ता है? अनंग। क्या होता है?
अनंग
मीन जिसको कोई अंग नहीं है, बॉडी नहीं है, शरीर रहित हो गए कामदेव। उनकी पत्नी रति परेशान हो गए, इसलिए वो किस रूप में जन्म लिया कृष्ण लीला में? प्रद्युम्न के रूप में, और फिर उनकी जो पत्नी बनती है द्वारका में। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान कामदेव को भी आकृष्ट करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम क्या है?
मदन
मोहन। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि मदन मोहन को भी आकृष्ट करने के लिए कोई और है, कौन है? श्रीमती राधिका है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या होता है?
मदन
मोहन,
राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी जो अपनी ओर मोहित करती है वो श्रीमती राधिका है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी यहाँ निवास कर रहे थे, और हम सुनते हैं हर बार कि ये जब जो रिवर है वहां से एक रामदास कपूर, कई बार कहा जाता है कृष्णदास कपूर, जो मुल्तान पंजाब से आया था, बहुत सारा नाव में नमक और कुछ व्यापार करने के लिए आगरा जा रहा था। तो इस टीला के आगे नदी में उसकी नाव अटक जाती है, डूबने वाले होती है। तो फिर वो बाहर आता है तो एक पूछता है कि मुझे इस नाव को बाहर करना है, मुझे आगे आगरा तक पहुंचना है। तो बाहर जैसे आया तो एक बालक मिला, उन्होंने कहा यहाँ एक पावरफुल बाबा जी रहते हैं सनातन गोस्वामी, उनको जाकर मिलो। तो सनातन गोस्वामी को, ठीक है, सनातन गोस्वामी को जाकर मिलो। तो वो रामदास कपूर जो व्यापारी थे वो आकर सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। सनातन गोस्वामी से कहते हैं आप कुछ उपाय बताइए जिसके द्वारा मेरी नाव पार हो सकती है। तो उन्होंने कहा मैं कुछ चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे पास कोई चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं है। आप जाओ किनके पास? मदन मोहन के पास, जो साथी खड़े हैं वृक्ष के नीचे, उनके पास जाओ और वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं। तो फिर वो व्यक्ति जाता है, मदन मोहन को प्रार्थना करता है, और मदन मोहन की कृपा से बहुत सारी वर्षा होती है जिससे उनकी नाव वापस चली जाती है आगरा की ओर, और वो बिजनेस खत्म करके फिर से इस स्थान में आते हैं बहुत सारा धन लेकर। जब वो धन लेकर आए तो सारा धन सनातन गोस्वामी के चरणों में डालना चाह रहे थे कि आपके कारण मुझे इतना धन लाभ हुआ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे तो इस धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोस्वामीगण क्या थे? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पते श्रेणीम सदा तुच्छवत, कि इन सबने ये सारा धन भौतिक ऐश्वर्य एक तूर्ण के समान त्याग दिया था, जो इतने बड़े मंडलपति थे। मंडलपति मीन बहुत बड़े साम्राज्य या बहुत बड़े धन के जो जिनके पास अत्यधिक धन आदि हैं। तो इन सबको त्याग कर ये गोस्वामी या वृंदावन में आए थे कृष्ण की सेवा के लिए जो सर्वोत्तम है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मदन मोहन की सेवा कर सकते हो, मदन मोहन के लिए मंदिर का निर्माण कर सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने एक ही व्यक्ति से मंदिर बनाया। हमें एक मंदिर बनाने के लिए कितने सारे लोगों को अप्रोच करना होता है, कितने साल गंवाने पड़ते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी के चरणों में आता है, उसको सनातन गोस्वामी सेवा देते हैं, इतने सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं। और इस तरफ जो एक छोटा सा एक एरिया है टेम्पल जैसा, तो सनातन गोस्वामी ने सोचा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने लेटर भेजा था सनातन गोस्वामी को, अगली बार मैं वृंदावन आऊंगा तो मेरे रहने की व्यवस्था तुम करना। तो उनके लिए सनातन गोस्वामी ने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया था कि जहां महाप्रभु चैतन्य आएंगे और वो निवास करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर से आए नहीं, सनातन गोस्वामी उनके विरह में यहाँ निवास करते थे। और वो व्यक्ति जिसने वो मंदिर बनाया उसने अपना छोटा सा स्टैचू भी बनाया। आप ऊपर जाके देखते हैं कि जहां भगवान का अभिषेक करके जल बाहर निकलता है बैक साइड में, जहां मंदिर धोने के बाद, तो वहां उसने अपना छोटा सा स्टैचू कि भगवान के जो चरणामृत या जो भी जल है वो कहां गिरे मेरे सर में, तो मैं हमेशा पवित्र रहूंगा। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति इतना मदन मोहन से आकृष्ट था कि वो जब अपने गांव पंजाब भी गया तो अपने गांव में उसने मंदिर का निर्माण किया, और मदन मोहन प्रतिभू मूर्ति की भी वहां उसने पंजाब में स्थापना की। और उसके फैमिली वगैरह उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे मदन मोहन जिनको सबंध विग्रह कहा जाता है, सबंध देव, कौन से देव है? सबंध, क्योंकि हम सबसे पहले अपना सबंध भगवान से स्थापित करते हैं, फिर उसके बाद सेवा करते हैं। जैसे कोई स्त्री है, युवती है, तो वो जब मैरिज होता है तो संबंध स्थापित होता है कि पति और पत्नी, फिर उसके बाद वो सेवा में लगती हैं। तो उसी प्रकार से संबंध देव के जो विग्रह है वो मदन मोहन है, और जो सेवा के विग्रह है वो कौन से हैं? गोविंद देव, जिनको अभिदेव विग्रह कहते हैं। और प्रयोजन जिनको हमें प्राप्त करना है, हाँ, कृष्ण प्रेम के रूप में, वो कौन है?
गोपीनाथ।
हाँ, तो इस प्रकार से ये गौड़िया संप्रदाय के भक्तों के तीन विग्रह प्राण है, इसलिए तीन विग्रहों के बारे में हमेशा स्मरण करना चाहिए, हमेशा चर्चा करनी चाहिए। तो ऐसे मदन मोहन सनातन गोस्वामी के प्रमुख विग्रह थे। और जब कृष्णदास कविराज को वृंदावन के भक्तों ने कहा कि हम सबको चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो जगन्नाथपुरी में हुई है उनकी सुनने की इच्छा है, तो कृष्णदास कविराज वैष्णव की आज्ञा के लिए ये ग्रंथ का निर्माण करने के लिए उन्होंने सोचा। तो वो किसी का परमिशन लेने के लिए आए, तो कहाँ आए? मदन मोहन के पास। सारे भक्त, हाँ, कृष्णदास कविराज को माला पहना के आप नया बुक लिखो चैतन्य चरितामृत, तो वो आए यहाँ और वो मदन मोहन से परमिशन लेने के लिए आए कि आप परमिशन दो, आप कृपा करो ताकि मैं ये नई रचना प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो जैसे उन्होंने प्रणाम किया मदन मोहन को, तो मदन मोहन के गले से माला गिर जाती है परमिशन के रूप में, और सनातन जो भी डिवोटित हैं वो आकर कृष्णदास कविराज को पहनाते हैं। तो इस प्रकार से मदन मोहन विग्रह सनातन गोस्वामी के क्या है? प्राण है। तो हमें भी अपने जीवन में हम किसी ना किसी को अपना प्राण अर्पित करते हैं, नहीं कि मेरा प्राण आपको अर्पित कर दिया, लेकिन किसको अर्पित करने के लिए तैयार होना चाहिए? भगवान के चरणों में। जैसे जयपुर की राजकुमारी है, जब ये मदन मोहन, हाँ, औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजा, औरंगजेब एक दिन अपने महल के ऊपर खड़ा था आगरा में, तो उसने वृंदावन की तरफ देखा कि बहुत बड़ी मशाल जल रही है, बहुत बड़ा प्रकाश नजर आ रहा था। तो उसने पूछा कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो उसको पता चला कि ये जो प्रकाश है वृंदावन से आ रहा है, और वृंदावन से कौन से मंदिर से? गोविंद देव। तो जब गोविंद देव मंदिर बनाया था, राजा मान सिंह ने, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत विशाल मशाल सा बनाया जिसमें दिन रात वो जला करते थे, जिसमें घी डाला जाता था और दूर दूर से वो नजर आता था। तो औरंगजेब ने कहा कि हिंदुओं का इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ऐश्वर्य, तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा और सारे मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। और ये जो मदन मोहन मंदिर है ये वृंदावन का सबसे पहला मंदिर है। यहाँ कुछ मंदिर नहीं था, केवल यमुना नदी थे और भगवान के चरणों की ये जो धूली है और तीसरा गोवर्धन। वृंदावन में और कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। और इन गोस्वामियों ने इतनी बड़ी देन दी है हमें, हम वृंदावन आ पा रहे हैं केवल 6 गोस्वामियों की कृपा से। उनकी इतनी बड़ी मूल्यवान गिफ्ट ये वृंदावन के रूप में हमें उपलब्ध है। तो इस प्रकार से जब औरंगजेब ने सारे टेम्पल्स तोड़े तो फिर यहाँ के विग्रहों को जयपुर भेजा जाता है, और जयपुर में राजा मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, इन तीन विग्रहों के अपने अपने साथ रखता है। अपने घर में पूजा करने के लिए अपने रानी बेटी सबके साथ वो मदन मोहन को रखते हैं, और अपने जितने मंत्रित हैं उनके लिए गोविंद देव अपने मंत्रालय के बाहर रखते हैं, और जो जनरल पब्लिक थी उनके लिए कौन से विग्रह रखे उन्होंने?
गोपीनाथ।
गोपीनाथ बाजार है वहां जयपुर में, वहां वो विग्रह है। तो ये जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, उसका जब विवाह हुआ तो अपने पिता से कहती है कि अब मुझे विवाह, उसने पूछा पिता बेटी क्या चाहती हो तुम अपने साथ ले जाना, क्या दो तुम्हारे लिए? तो वो कहती है कि मुझे मदन मोहन चाहिए। कौन चाहिए?
मदन
मोहन। तो राजा भी अत्यधिक प्रेम करते थे मदन मोहन से, उन्होंने सोचा कैसे मैं मदन मोहन दूं, लेकिन बेटी मांग रही है इसलिए उन्होंने मदन मोहन देने के लिए तैयार किया। तो राजा ने कहा कि मैं कल बहुत सारे विग्रह रखूंगा और उसमें मदन मोहन भी होंगे, आपके आंखों में पट्टी लगाई जाएगी और आप मदन मोहन को ढूंढ के निकालो, और सही ढूंढोगी तो आप अपने साथ करौली ले जा सकती हो। करौली के राजकुमार से उनका विवाह हुआ था। तो जब बहुत सारे विग्रह रखे, उनके आंखों में पट्टी डाले, तो वो रात को बहुत रो रही थी कि मदन मोहन मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। मदन मोहन स्वप्न में आकर कहते हैं कि जब तुम आंखों में पट्टी होकर विग्रहों को टच करोगे, मेरे पास आओगे, तो मैं अपनी उंगली ऐसे खड़ी करके रखूंगा, तो जो उंगली खड़ी होगी समझ लो कि मैं वही हूँ। तो जब उस राजकुमारी की आंखों में पट्टी डाली जाती है, बहुत सारे विग्रहों का स्पर्श करते करते वो पहुंचती हैं, तो मदन मोहन क्या करते हैं, अपनी उंगली खड़ी करते हैं, और राजकुमारी कहती यही चाहिए मुझे विग्रह, तो देखते हैं तो मदन मोहन, राजा को देना पड़ता है। फिर वहाँ राजा गोपाल सिंह थे, वहाँ के राजा करौली के, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं। फिर मदन मोहन जयपुर से वहाँ शिफ्ट होते हैं करौली में, और उनसे सेवा स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की ये अद्भुत विग्रह है मदन मोहन, और मदन मोहन का शरण ग्रहण करने से हम मदन के वश से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो भौतिक काम है उससे मुक्त होना है तो विग्रहों के विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, विग्रहों को माइन्यूटली मतलब डिटेल्स देखना चाहिए कि भगवान ने बांसुरी किस प्रकार से रखी है, कौन से वस्त्र पहने हैं, कौन सा टर्बन या मुकुट आदि है, उनके चरण कमल कैसे, तुलसी आदि, कौन से गार्लैंड्स मालाएं भगवान ने पहनी हैं, किस प्रकार से उनको चंदन का श्रृंगार है, ये सारी चीज़ें एक डिवोटी को देखते रहना चाहिए। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान के जो विग्रह हैं वो भगवान से क्या है, अभिन्न है। इसलिए कृष्णदास कविराज ने कहा, प्रतिमा नहे तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, हे कृष्ण आप केवल मूर्ति नहीं हो, इस भगवान के इस विग्रह को मूर्ति के रूप में हम अपनी चमड़ी की आंखों से देखते हैं, आप प्रतिमा या मूर्ति नहीं, वो पत्थर मार्बल की आप क्या हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हो। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज भी हमें शिक्षा देते हैं, और भगवान के विग्रहों को देखने की योग्यता हमारे पास हो सकती है जब हमारे पास क्या हो, भगवान के प्रति प्रेममय आंखें हो। तो प्रेममय आंखों का निर्माण तभी हो सकता है जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं और गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं कि प्रेम रूपी अंजन के कारण आपको भक्त सदैव अपने हृदय में श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। तो ये प्रेम अंजन कहाँ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक गुरु के शरण कमलों में। तो जितना अधिक एक साधक या सेवक आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता है, उतना ही सरल रूप से भगवान को वो अनुभव करता है या देख पाता है। तो ये सनातन गोस्वामी की कई सारी लीलाएं हैं, सनातन गोस्वामी का ये समाधि है। तो सनातन गोस्वामी का एक व्रत था, हर एक डिवोटी का अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं आध्यात्मिक लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी के कई सारे प्रिंसिपल्स थे, उनमें से एक था कि वो रोज जाकर क्या करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा हर रोज, और गोवर्धन की परिक्रमा करके वह मानसी गंगा में रहा करते थे। मानसी गंगा में देखा कि वह बहुत सारे मच्छर हैं, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि मैं वृंदावन जाके फिर से रहता हूँ, उनको आने जाने में टाइम लगता था, तो उन्होंने कहा मच्छरों के कारण यहाँ मैं तंग हो रहा हूँ, तो यहाँ जाकर सरलता से भजन कर सकता हूँ। तो मानसी गंगा में और एक महान वैष्णव रहते हैं, कौन से थे, चकलेश्वर महादेव। कौन से महादेव, चकलेश्वर महादेव, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो चकलेश्वर महादेव ने सोचा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि सनातन गोस्वामी, हाँ, जो कृष्ण लीला में लवंग मंजरी है, सनातन गोस्वामी का संग लाभ मुझे मिल रहा है, और सनातन गोस्वामी मुझसे दूर जाएंगे तो मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वो सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट होकर उनको कहते हैं कि आप इस स्थान को छोड़ो नहीं कदापि, मैं यहाँ से मच्छरों को भगा दूंगा, लेकिन आप क्या करो, यहाँ निवास करो। तो वहां मच्छर मिलते नहीं, सनातन गोस्वामी वहां निवास करते हैं। चकलेश्वर महादेव का मंदिर आप देखेंगे वहां मानसी गंगा के, उसके सामने ही बिल्कुल सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, वहां भजन किया करते थे हर रोज। वो उनकी परिक्रमा करते थे गोवर्धन की, और हम सुनते हैं कि सनातन गोस्वामी बहुत बूढ़े हो गए, तो सनातन गोस्वामी फिर भी अपनी सेवा को छोड़ना नहीं चाहते, कंटिन्यू करना चाह रहे थे परिक्रमा के रूप में जो गोवर्धन या कृष्ण की सेवा। तो भगवान देखते हैं कि इतनी आयु हो गई फिर भी ये गोवर्धन की परिक्रमा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो भगवान एक दिन प्रकट हो जाते हैं बालक ग्वाल के रूप में, और उनको कहते हैं कि सनातन तुम्हें इतना लंबा परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप तुम बूढ़े हो गए हो। तो भगवान तुरंत ही गोवर्धन के ऊपर एक पत्थर था शिला, उसके ऊपर जाकर खड़े होते हैं। खड़े होते ही उनके चरणों से वो शिला पिघलती है, और उनके जो डंडा उनके हाथ में था उसका निशान होता है, बछड़े के खुर का निशान होता है। फिर सनातन गोस्वामी को अपने हाथ से उठाकर वो शिला देते और कहते सनातन हाँ तुम क्या करो, इस शिला की परिक्रमा करो, इसकी चार परिक्रमा करने से गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। तो सनातन गोस्वामी उस शिला को लाकर राधा दामोदर मंदिर में रखते हैं, और फिर उसकी चार परिक्रमा करने से गिरिराज की परिक्रमा होती है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी बहुत अधिक प्रिय डिवोटी थे चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु कई सारी सेवाओं में उनको नियुक्त करते हैं, तो ऐसे सनातन गोस्वामी के चरणों में यहाँ हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सेवा और साधना हरिनाम का उच्चारण करने में हमें बल प्रदान करें, ताकि हम अपना आध्यात्मिक लाइफ भक्तों के संग में कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।